श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी, जो उपदेश हमें भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब पांचवी पुस्तक में भावानुगम का अपना विषय चल रहा है, उसमें अभी ओग की अपेक्षा बात चल रही है। मिथ्या दृष्टि यह औदयिक भाव है, हमने देखा था। सासादन सम्यक दृष्टि यह पारिणामिक भाव है और सम्यक मिथ्या दृष्टि यह क्षयोपशमिक भाव है। इतनी बात हमने चर्चा की थी उसकी, उसको ऐसा क्यों कहा उसकी भी चर्चा समाधान सब हो गए। अब यहाँ असंयत सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। कल हमने देखा था कि असंयत सम्यक दृष्टि यह कौन सा भाव है, तो उपशम औपशमिक भाव भी है, क्षायिक भाव भी है और क्षयोपशमिक भाव भी है। क्योंकि अभी हम 200 पृष्ठ पर आए हैं, क्योंकि ये तीनों ही प्रकार का सम्यक्त्व वहां पाया जाता है, ये बात हमने कल देखी थी। अभी हम 200 पृष्ठ पर आए हैं, नीचे का जो शंका समाधान है उसको पढ़ेंगे। शंका असंयत सम्यक दृष्टि में गति लिंग आदि भाव पाए जाते हैं, फिर उनका ग्रहण यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ औपशमिक क्षाउपशमिक और शायक ये भाव आपने बता दिए, तो यहाँ औदयिक आदि भाव क्यों नहीं लिए, ऐसा प्रश्न है। जैसे मिथ्या दृष्टि में पूछा था, वहाँ औदयिक भाव बताया था, तो अन्य भाव क्यों नहीं लिए, उसके लिए लंबी चौड़ी उन्होंने लिस्ट दी थी शंकाकार ने। वैसे यहाँ जो बात हो रही है, हमने पहले देखा था, पहले चार गुणस्थानों में दर्शन मोह की अपेक्षा लगती है, तो चौथे गुणस्थान में दर्शन मोह का क्या होगा, या तो उपशम होगा या क्षोपशम होगा या क्षय होगा, उसकी अपेक्षा यहाँ तीन भाव बताए हैं। शंका वही पूछ रहा है शंकाकार, अभी उसका समाधान करते हैं। असंयत सम्यक दृष्टि में भले ही गति लिंग आदि भावों का अस्तित्व रहा आवे, परंतु उनसे सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता। यहाँ सम्यक्त्व ये कौन सा भाव है उसकी बात चल रही है। यहाँ ऐसा नहीं पूछा है कि असंयतपना कौन सा भाव है, यदि असंयतपना कौन सा भाव है पूछेंगे तो औदयिक भाव कहना पड़ेगा, असंयम है, संयम का अभाव है। यहाँ सम्यक्त्व जो है, क्योंकि दर्शन मोहिनी की यहाँ अपेक्षा लगती है, इसलिए यहाँ उसको नहीं लिया, अन्य भावों को यहाँ नहीं लिया। इसलिए सम्यक दृष्टि भी औदयिक आदि भावों के व्यपदेश को प्राप्त नहीं प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। ये सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, दर्शन मोहिनी की यहाँ अपेक्षा लगानी थी, इसलिए यहाँ अन्य भावों की चर्चा नहीं है। चौथे गुणस्थान वाले को अन्य भाव होते हैं, उसकी भी यहाँ ना नहीं है। कल हमने लिस्ट देखी थी कौन कौन से भाव होते हैं उसके। हाँ, अब अगला हम सूत्र देखते हैं। ओदयेण भावेण पुनः असंजदो लिखा ही है, देखे असंयत सम्यक दृष्टि में सम्यक दृष्टि है कौन सा भाव है, तो औपशमिक क्षयोपशमिक क्षय, और उसमें जो असंयतपना जो है असंजदो पूछा ना, असंयत यह कौन सा भाव है, तो कहते किंतु असंयत सम्यक दृष्टि का असंयत तत्व औदयिक भाव से है, उसका असंयतपना वो उसका औदयिक भाव है। सम्यक दृष्टि के तीनों भाव कहकर असंयत के उसके असंयत तत्व की अपेक्षा कौन सा भाव होता है, इस बात के बतलाने के लिए यह सूत्र आया है। क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि कहने में वहाँ सम्यक दर्शन है एक बात हुई, और वहाँ असंयतपना है, असंयत तत्व है, ये दो बातें हुई। तो सम्यक्त्व है वो औपशमिक या क्षायोपशमिक या क्षायिक है, और वहाँ जो असंयतपना है वो उदयिक भाव। चूंकि संयम के घात करने वाले कर्मों के उदय से कर्मों के उदय से यह असंयत रूप होता है, संयम का घात करने वाले कर्मों के उदय से। संयम का घात करने वाले कौन कौन से कर्म हैं? हाँ, अप्रत्याख्यानादि संज्वलन नहीं कह सकते, संज्वलन संयम का। हाँ, तो संयम के घात करने वाले कर्मों के उदय से यह असंयत रूप होता है, इसलिए असंयत यह उदयिक भाव है। शंका, अधस्तन गुणस्थानों के असंयत पने को औदयिक क्यों नहीं कहा है? ये नीचे मिथ्यात्व सासाधन और सम्यक मिथ्यात्व की भी चर्चा की थी, वहां भी ये जीव असंयत ही था, तो वहां उसके औदयिक भाव की चर्चा क्यों नहीं की? यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसी ही सूत्र से उन अधस्तन गुणस्थानों के औदयिक असंयत भाव की उपलब्धि होती है। क्या कहते हैं? असंयत पना है, चौथे गुणस्थान तक है। अब चौथे गुणस्थान में बता दिया कि असंयतपना जो है, असंयतत्व, वो संयम घाती कर्मों के उदय के कारण है, यानी उदय भाव सिद्ध किया। तो नीचे के यानी ये पहले से चौथे गुणस्थान तक सभी गुणस्थानों में यही असंयतपना का औदयिक भाव सिद्ध हो जाता है। चूंकि यह सूत्र अंत दीपक है, मतलब ये असंयतपना भी यहाँ अंत दीपक है और ये सूत्र भी अंत्य दीपक है, चौथे गुणस्थान तक के पहले सभी को ये लागू होता है। इंदुबेन, अंत्य दीपक वो याद है आपको? जैसे अंतिम सूत्र के साथ इसका हमने उसको कह दिया, तो पहले वाले सब, जैसे हम नमो लोए सव साहुनम कहते हैं, तो नमो लोए ये जो नमो तो हर एक बार कहा, लोए सव ये शब्द है वो सर्वत्र लागू होता है। नमो लोए सव अरियंताणम, नमो लोए सव सिद्धाणम, तो ये लोए सव लोक में सभी, ये जो शब्द हुआ पांचवें पद के साथ लगाया, परंतु वो सभी के साथ लागू होता है, तो उसको कहते वो अंत्य दीपक शब्द है। वैसे यहाँ असंयत तत्व चौथे गुणस्थान में कहा, उसका कारण भी बताया और वो औदयिक भाव है कह दिया, तो ये जो सूत्र है वो तो अंत्य दीपक होगा, पहले से चौथे तक लागू होगा। इसलिए असंयत भाव को अंत में रख देने से वह पूर्वोक्त सभी सूत्रों का अंग बन जाता है, अथवा अतीत सर्व सूत्रों में अपने अस्तित्व को प्रकाशित करता है। अंत्य दीपक होने से पहले भी सूत्रों में यह है ऐसा समझ लेता, इसीलिए वो सी दीर्घ चाहिए, इसीलिए सभी अतीत गुणस्थानों का असंयम भाव औदयिक होता है यह बात सिद्ध हुई। यानी पहले दूसरे तीसरे चौथे सभी जगह असंयत भाव जो है वह औदयिक भाव है। शंका, यह असंयत पद आदि में न कहकर यहाँ पर कहने का क्या अभिप्राय है? इनका कहना है इसको आदि दीपक क्यों नहीं बनाया? जैसे हम कहते हैं वृषभादि तीर्थंकर, यानी वृषभादि वो सभी तीर्थंकर आगे, तो पहले ही बता दिया, तो पहले सूत्र में लगा देते तो हम समझ जाते आगे तक। समाधान, यहाँ तक के गुणस्थानों के असंयम भाव की अंतिम सीमा बताने के लिए और ऊपर के गुणस्थानों के असंयम भाव का प्रतिषेध करने के लिए यह असंयत पद यहाँ पर कहाँ है, पहले ही गुणस्थान में बता देते तो कहाँ तक है वो अलग से बताना पड़ता। चौथे में अभी असंयतपना का सूत्र बताने से पहले से चौथे तक है और चौथे के आगे असंयतपना नहीं है, ये दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर उसका कथन कर दिया है। अब सातवां नंबर का सूत्र कहेंगे हम, अगले गुणस्थानों की बात करेंगे। संजदा संजद पमत्त अपमत्त संजदाति को भावो खवो व समयो भावो। पहले चार गुणस्थानों में तो दर्शन मोह की अपेक्षा आती है, बता दिया था उन्होंने। देखो क्या कहते हैं, संयता संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत, यह कौन सा भाव है? क्षाउपशमिक भाव है। कल वहां भी बताया था ना, क्षाउपशमिक, देश संयत वगैरह वगैरह। चूंकि क्षोभशम नामक चारित्र मौनीय कर्म का उदय होने पर संयता संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयतपना उत्पन्न होता है, इसलिए ये तीनों ही भाव क्षायोपशमिक है। चारित्र मोनीय कर्म का क्षोभशम है वहां। क्षोभशम नामक चारित्र मोनीय कर्म का उदय होने पर, ऐसा उल्टा उदय होने पर, ऊपर ही होता है चारित्र मोनीय कर्मोदय खो सम सन्निदय संते, वो कर्म का उदय कैसा है तो क्षोभशम वाला जैसा है। अभी वो क्षोभशम में जो कुछ अनुदय है, यानी सर्वघाती का उदय नहीं है, उदयाभावी क्षय है, बाकी वो पूरी परिभाषा वहां लागू होगी। तो ये चारित्र मोहनीय कर्म का क्षोभशम है वहां, हमने देखा था वो पांचवे से अभी है, चारित्र मोहनीय की अपेक्षा लगेगी। तो इसको समझाते, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क के उदय में तथा संज्वलन चतुष्क और नव नौकषाय के उदय में सर्व प्रकार से चारित्र विनाश करने की शक्ति का अभाव है, इसलिए उनके उदय की क्षय संज्ञा है। क्या कहते हैं, फिर पढ़ दे इसको। अब ये पांचवा गुणस्थान है तो कौन कौन से कर्मों का उदय है वहां? प्रत्यक दो चौकड़ी का उदय है और दो चौकड़ी का अनुदय है। प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन का उदय चल रहा है दोनों का, जो मुखिया है प्रत्याख्यानावरण उसको कहेंगे, परंतु उसमें संज्वलन भी साथ में है। तो क्या कहते हैं, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क के उदय में तथा संज्वलन चतुष्क और नव नौकषाय के उदय में सर्व प्रकार से चारित्र विनाश करने की शक्ति का अभाव है। असंयत भाव में क्या था, सर्व प्रकार का संयम का घात था, यहां किंचित उघाड़ रूप होगा वहां, इसलिए संयम और असंयम ऐसा कहा यहां, इसलिए उनके उदय की क्षय संज्ञा है। उन्हीं प्रकृतियों की उत्पन्न हुए चारित्र को अथवा श्रेणी को आवरण नहीं करने के कारण उपशम संज्ञा है। क्या कहते हैं, चारित्र को आवरण नहीं करने के कारण उपशम संज्ञा है, पूर्ण रूप से आवरण नहीं कर रहा है। जैसे मति ज्ञानावरण में हम घटित करते हैं, वैसे क्षोभशम की परिभाषा यहां घटित करना है। यह सदवस्था रूप उपशम को यहां उपशम कहा। क्षय और उपशम इन दोनों के द्वारा उत्पन्न हुए ये उक्त तीनों भाव भी क्षयोपशमिक हो जाते हैं। शंका, यदि ऐसा माना जाए तो प्रत्याख्यानावरण कषाय का सर्वघातीपना नष्ट हो जाता है। देखो क्षोभशम की परिभाषा हमने पहले देखी थी कि वर्तमान कालीन क्या लिखा था, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उदय का अभाव, और वही वो भविष्यकालीन पड़े रहे वो सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। अब यहाँ क्या बात हो रही है, प्रत्याख्यानावरण का उदय चल रहा है, और प्रत्याख्यानावरण प्रकृति कैसी है, सर्वघाती प्रकृति है। इसलिए शंकाकार की शंका क्या है, यदि ऐसा माना जाए, यानी प्रत्याख्यानावरण का तो उदय चल रहा है और उसको आप क्षोभशम कहते हैं, तो प्रत्याख्यानावरण कषाय का सर्वघातीपना नष्ट हो जाता है, उसको देशघाती मानना पड़ेगा। तो उसका समाधान, वैसा मानने पर भी प्रत्याख्यानावरण कषाय का सर्वघातीपना नष्ट नहीं होता है, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण कषाय अपने प्रतिपक्षी सर्व प्रत्याख्यान गुण को घातता है, यानी सर्व संयम को घातता है। प्रतिपक्षी यानी अपोजन, अपोनेंट, जैसे केवल ज्ञानावरण कर्म है वो किसका घात करता है, अपने प्रतिपक्ष की, उसका उदय है तो मति ज्ञान, मति ज्ञान को रोक नहीं सकता, ख्याल है ना। जैसे भी निद्रा कर्म है तो निद्रा कर्म कौन सा कर्म है, दर्शनावरण है, तो उसके उदय में क्या होगा, दर्शन का घात होगा ना, दर्शन का घात होगा। आप क्या कहते हैं अरविंद भाई, हाँ, निद्रा का प्रतिपक्षी कौन है? जागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था का नाश होगा, नहीं तो नींद में दर्शन है ही नहीं, ऐसा मानना पड़ेगा। दर्शन से रहित हो जावे, यानी पूरे दर्शन का नाश नहीं कर रहे, उसके प्रतिपक्ष का ही वो रोकने में समर्थ है। हर एक का अलग अलग, एक एक कर्म का नाम अलग दिया ना, तो यहाँ क्या कहते हैं, ये जो प्रत्याख्यान आवरण, प्रत्याख्यान का आवरण करने वाला, वो आवरण किस पर डालता है? प्रत्याख्यान का। प्रत्याख्यान यानी संपूर्ण त्याग, उसको आवृत करता है, यानी पूर्ण त्याग नहीं होने देता। क्या कहते हैं यहाँ, प्रत्याख्यान आवरण कषाय अपने प्रतिपक्षी, उसका प्रतिपक्षी कौन है अभी? प्रत्याख्यान यानी सर्व प्रत्याख्यान यानी सर्व संयम, सर्व संयम गुण को घातता है, इसलिए वह सर्वघाती कहा है। परंतु सर्व अप्रत्याख्यान को नहीं घातता है। अप्रत्याख्यान यानी किंचित त्याग, जैसे हम नो कषाय कहते हैं, किंचित कषाय को नो कषाय कहते हैं, वैसे यहाँ अप्रत्याख्यान। तो कहते किंतु सर्व अप्रत्याख्यान को नहीं घातता है, क्योंकि उसका उस विषय में व्यापार नहीं है। इसलिए इस प्रकार से परिणत प्रत्याख्यानावरण कषाय के सर्वघाती संज्ञा सिद्ध है। जिस प्रकृति के उदय होने पर जो गुण उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है, उसकी अपेक्षा वह प्रकृति सर्वघाती संज्ञा को प्राप्त नहीं होती। देखो ये बहुत महत्व की चर्चा चल रही है, क्योंकि ये प्रश्न हमें भी पहले बहुत उठा था कि ये प्रत्याख्यानावरण तो सर्वघाती प्रकृति है, और सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक कैसे होते हैं? सर्वघाती ही होते हैं। परंतु देशघाती के प्रकृति जो है, प्रकृति देशघाती हो तो उसमें दोनों प्रकार के स्पर्धक होते हैं, स्पर्धक, सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं और देशघाती स्पर्धक भी होते हैं। जैसे मति ज्ञानावरण में दोनों प्रकार के स्पर्धक हैं। जब मति ज्ञानावरण का क्षोभशम कहते हैं तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय रहता है, और वो सदवस्था रूप उपशम भी, और देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है। अब यहाँ पर हम जब सर्वघाती प्रकृतियों की लिस्ट देखते हैं सूची, तो उसमें प्रत्याख्यानावरण कर्म जो है वो सर्वघाती प्रकृति है। पांचवें गुणस्थान में उदय किसका है? प्रत्याख्यानावरण का चल रहा है, और वो तो सर्वघाती प्रकृति है। फिर भी आप यहाँ क्षोभशम कैसा घटित करते हो? यदि क्षोभशम घटित करते हो तो प्रत्याख्यानावरण को देशघाती मानना पड़ेगा, ऐसा प्रश्न है। जो प्रश्न हमें भी बहुत दिन से पड़ा था, तो उसका उत्तर यहाँ है। देखिए क्या कहते हैं, ये जो प्रत्याख्यानावरण है उसको अपेक्षा लगाओ। सर्वघाती किस अपेक्षा से है? संयम, संयम की अपेक्षा से सर्वघाती। संयम बिल्कुल नहीं होने देता अपने प्रतिपक्ष का, सर्वघाती है। परंतु क्या वो पूरा अप्रत्याख्यान के लिए वो सर्वघाती नहीं है? थोड़ा सा संयम, जिसको कहते ना अणुव्रत, तो धारण कर सकता है उसके उदय में, इसलिए उसकी अपेक्षा वो देशघाती हो जाए। निमित्त, अभी यहाँ निमित्त की भाषा है। हाँ, संयम नहीं होता, परंतु असंयम को वो नहीं रोक, यानी थोड़े अनुव्रत को वो नहीं रोक सकता। जैसे चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण का उदय होता तो किंचित भी प्रत्याख्यान नहीं होने देता था, किंचित भी अनुमात्र, यानी अनुमात्र, अनुमात्र प्रत्याख्यान को भी आवृत करता था। परंतु ये तो मात्र सकल संयम को आवृत करता है, थोड़े संयम को आवृत नहीं करता। अभी हम व्रतों की भाषा में कहेंगे, महाव्रतों को तो नहीं होने देता है, परंतु अनुव्रतों को होने देता है, उसके लिए रोकने में समर्थ नहीं है, तो उसकी अपेक्षा उसको देशघाती कहेंगे। हाँ, तो इसका प्रतिपक्षी कौन है? पूर्ण संयम इसका प्रतिपक्षी है, पूर्ण संयम को आवृत करता है, परंतु सकल संयम जिसको कहा, परंतु जो पांचवे गुणस्थान योग्य अनुव्रत है उसको नहीं रोकता है। देश संयम कहा ना, सकल संयम को रोकता है, देश संयम को नहीं रोकता, इसलिए इसको सकल संयम को रोकने की अपेक्षा तो सर्वघाती कहेंगे, परंतु देश संयम को नहीं रोकने की अपेक्षा इसको वो देशघाती कहेंगे। देखो ये पूरा पैराग्राफ फिर पढ़ते हैं। वैसा मानने पर भी प्रत्याख्यानावरण कषाय का सर्वघातीपना नष्ट नहीं होता है, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण कषाय अपने प्रतिपक्षी सर्व प्रत्याख्यान गुण को घातता है, यानी जिसको हम सकल संयम कहेंगे, सकल संयम को तो घातता है, इसलिए तो सर्वघाती कहा जाता है। किंतु सर्व अप्रत्याख्यान को नहीं घातता है, क्योंकि उसका इस विषय में व्यापार नहीं है, उसके लिए वो घातक नहीं है, घाती नहीं है। इसलिए इस प्रकार से परिणत प्रत्याख्यानावरण कषाय के सर्वघाती संज्ञा सिद्ध है। जिस प्रकृति के उदय होने पर जो गुण उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है, उसकी अपेक्षा वह प्रकृति सर्वघाती संज्ञा को नहीं प्राप्त होती है। अभी हम ज्ञानावरण पर लगाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। मति ज्ञानावरण का उदय होने पर मति ज्ञान उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है, उसकी अपेक्षा मति ज्ञानावरण, ये हम देशघाती कहेंगे, उसको सर्वघाती नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका उदय भी चलता रहे और उसका गुण भी प्रकट होता रहे। क्षोभशम की परिभाषा हमने ऐसी पहले देखी थी कि जिस प्रकृति का उदय होने पर उसका जो प्रतिपक्षी है या जीव का जो गुण है, जिस गुण की बात चल रही है, उसका अंश तो प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। इस अपेक्षा से ये प्रत्याख्यानावरण में यानी देश संयम वाले को, पांचवें गुण स्थान वाले को क्षोभशम भाव घटित होता है। बहुत अच्छा उत्तर है। यदि ऐसा न माना जाए तो अति प्रसंग दोष आ जाएगा। कल हमने अतिव्याप्ति दोष की चर्चा की, यह अति प्रसंग है ना, वो भी अतिव्याप्ति की बात होती है। अब अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से और उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से तथा चारों संज्वलन और नवो नौकषायों के सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभाविक क्षय से और उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से तथा देशघाती स्पर्धकों के उदय से, और तीन तीन बात कह रही, नौ कषाय की भी बात बीच में ली, और प्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्क के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से देश संयम उत्पन्न होता है। देखो ये क्षोभशम की परिभाषा लंबी है, क्योंकि यहाँ तो कौन कौन से लेना है, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय क्षय, उन्हीं का उदयाभावी ये सदवस्था रूप उपशम, अब संज्वलन की बातें, चारों संज्वलन और नौ नौकषाय, उनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय, और प्रत्याख्यानावरण में प्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्क के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय। सर्वघाती क्यों का, देश संयम का पूरा घात करते हैं, इसलिए देश संयम उत्पन्न होता है। अब ये प्रमत्त प्रमत्त की बात करेंगे। अब प्रमत्त प्रमत्त में क्या है, चारित्र मोहनी की ये जो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सबकी क्या पोजीशन है उसको बता रहे। अनंतानुबंधी आदि 12 कषायों के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, ये कौन से 12 कषाय है, अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यानावरण 4 और प्रत्याख्यानावरण 4, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव कहते ना, ये 12 कषाय, उनके सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से, अब संज्वलन की बात करेंगे, चारों संज्वलन उपशम से की बात कॉमा देना, यानी वो आगे की बात है, वो ख्याल में आएगी। चारों संज्वलन और नवो नौकषायों के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से तथा उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम, और उदय किसका होगा अभी, हाँ, उन्हीं संज्वलन और नौकषायों के देशघाती स्पर्धकों के उदय से प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान संबंधी संयम उत्पन्न होता है। ये किसका उदय नहीं है और किसका उदय चल रहा है उसकी बात। इसलिए उक्त तीनों ही भाव क्षायोपशमिक है। कौन से तीनों भाव की बात की हमने, हाँ, देश संयम या संयमासंयम, प्रमत्त और अप्रमत्त, ये तीनों ही सार्वभौमिक भाव है, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। अच्छा, सिद्ध नहीं किया ये तो, ऐसा कितने ही आचार्य कहते ऐसा कहते, किंतु यानी ये जो उनकी बात है वो सिद्ध नहीं होती ऐसा कह रहे हैं। किंतु यह कथन युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि उदय के अभाव को उपशम कहते हैं ऐसा अर्थ करके उदय से विरहित सर्व प्रकृतियों को तथा उन्हीं के स्थिति और अनुभाग के स्पर्धकों को उपशम संज्ञा प्राप्त हो जाती है। अभी वर्तमान में क्षय नहीं है, अच्छा, क्योंकि जिस प्रकृति का उदय विद्यमान है उसके क्षय संज्ञा होने का विरोध है, इसलिए ये तीनों ही भाव उदयोपशमिक पने को प्राप्त होते हैं, उदय और उपशम को, किंतु ऐसा माना नहीं जा सकता, क्योंकि उक्त तीनों गुणस्थानों के उदयोपशमिक पना प्रतिपादन करने वाले सूत्र का अभाव है, और फल देकर एवं निर्जरा को प्राप्त होकर गए हुए कर्मस्कंधों के क्षय संज्ञा करके उक्त गुणस्थानों को सार्वभौमिक कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर मिथ्या दृष्टि आदि सभी भावों के सार्वभौमिकता का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा, इसलिए पूर्वोक्त ही अर्थ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वही निरवध्य निर्दोष है। कौन सा अर्थ उन्होंने बताया था, वो जो भी हमने देखा था प्रत्याख्यान वर्ण में, सर्वघाती देशघाती, संयम की अपेक्षा तो सर्वघाती है और देश संयम होने देता है, उस अपेक्षा से वो हाँ देशघाती, इसलिए सार्वभौम का नाम घटित होता है। अब शंका, दर्शन मोनि कर्म के उपशम क्षय और क्षोपशम का आश्रय करके संयता संयातिकों के औपशमादिक भाव क्यों नहीं बताए गए? चौथे गुणस्थानों में औपशमिक क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव बताया था, क्योंकि वहां सम्यक तो कौन सा होता है उस अपेक्षा से बताया था। तो प्रश्नकार का प्रश्न है, यहां भी तीनों प्रकार के सम्यक तो पाए जाते हैं, तो यहां वे भाव क्यों नहीं बताए? चले समाधान, नहीं, क्योंकि दर्शन मोहनीय कर्म के उपशमादिक से संयमा संयमादि भावों की उत्पत्ति नहीं होती। संयमा संयम जो भाव उत्पन्न हुआ है उसमें दर्शन मोहम, देखो हमने पहले ही देखा था, पहले चार गुणस्थानों में दर्शन मोहनीय का क्या होता है वो देखना है, पांचवें गुणस्थान में दर्शन मोहनीय से उसके उपशम क्षोपशम से पांचवा गुणस्थान नहीं उत्पन्न हुआ, सम्यक तो उसके साथ उत्पन्न हुआ है, परंतु पांचवा गुणस्थान देश संयमपना जो है, संयमा संयमपना है, वो दर्शन मोहनीय कर्म के कारण नहीं उत्पन्न हुआ है, वहां चारित्र मोहनीय की अपेक्षा लगती है। तो चारित्र मोहनीय में क्या हो रहा है, तो वहां क्षोपशम घटित करके उन्होंने भी बताया, देखो, क्योंकि दर्शन मोहनीय कर्म के उपशमादिक से संयमा संयमादि भावों की उत्पत्ति नहीं होती। दूसरी बात, दूसरे यानी दूसरी बात, यहां पर सम्यक्त्व विषयक पृच्छा भी नहीं है, सम्यक्त्व कौन सा ऐसी बात नहीं पूछी है जिससे कि दर्शन मोहनीय निमित्तक औपशमादिक औपशमिकादि भावों की अपेक्षा संयता संयादिक के औपशमिकादि भावों का व्यपदेश हो सके। क्या कहते हैं, यदि यहाँ सम्यक्त्व कौन सा है ऐसा पूछते तो कह देते दर्शन मोहनीय का उपशम है, क्षय है या क्षोपशम है, परंतु प्रश्न ये संयमा संयम कौन सा भाव है ऐसा पूछा था, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि उस प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अब तक हमने सात गुणस्थान देखे और हर एक गुणस्थान के भाव भी देखे। पहले चार गुणस्थानों में दर्शन मोहनीय की अपेक्षा देखी, पहले में औदयिक भाव, दूसरे में पारिणामिक भाव, तीसरे में क्षोपशम भाव और चौथे में औपशमिक क्षायिक और क्षयोपशमिक भाव। पांचवा छठा सातवां जो गुणस्थान है वहां चारित्र मोहनी की अपेक्षा लगाते, वहां क्षोपशमिक भाव। अब श्रेणी की बात करेंगे, चतुर्नम उवसमात्तिको भावो ओवसमियो भावो, अपूर्वकरण आदि चारों गुणस्थानवर्ती उपशामक यह कौन सा भाव है, औपशमिक भाव है, वह इस प्रकार है। अब यहां भी चारित्र मोहनी की ही अपेक्षा लगानी है, तो यहाँ चारित्र मोहिनी का उपशमन होता है, इसलिए वह उपशमिक भाव कहलाए। चारित्र मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों का उपशमन करते हैं। ये 21 प्रकृतियां कौन सी है आपको पता है? हाँ हाँ, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, कितना हुआ है? 12 हुए और नौ नौ, वही नौ नौ कषाय में आ जाते। हाँ, 12 और 9 21, तो बाकी का क्या हुआ? अनंतानुबंधी का क्या हुआ? हाँ, विसंयोजन होता है ना श्रेणी चढ़ने के पहले। और दर्शन मोहिनी का क्या हुआ? द्वितीयोपशम किया होगा या किसी ने क्षय किया होगा, उसकी बात, क्षय समय दृष्टि हो या द्वितीयोपशम समय दृष्टि हो, चारित्र मोहिनी का उपशम करते हुए उपशम श्रेणी चढ़ता है। उसकी अपेक्षा चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों के उपशम होने की अपेक्षा यहाँ औपशमिक भाव घटित किया है। देखो, चारित्र मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों का उपशमन करते हैं, इसलिए चारों गुणस्थानवर्ती जीवों के औपशमिक भाव, ये क्या है, माना गया है, ठाना गया है, क्या है? तम जाए किस पढ़ियो वो सामे जदन वो समय भाव। हाँ, शंका, समस्त कषाय और नौ कषायों के उपशमन करने से उपशांत कषाय वितराग छद्मस्थ जीव के औपशमिक भाव भले ही रहा आवे। ये कल हमने चर्चा की थी ना, 11वें गुणस्थान में तो समस्त कषायों का उपशमन हुआ है, तब तक तो वो कार्य हुआ नहीं है पूर्ण, तो 11वें गुणस्थान वाले को तो कहो आप उपशम भाव। किंतु अपूर्व कर्णादि शेष गुणस्थानवर्ती जीवों के औपशमिक भाव नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन गुणस्थानों में समस्त मोहिनी कर्म के उपशम का अभाव है, क्योंकि उपशम एक एक के बाद एक एक कर्म का उपशम होता जाता है, तो समस्त कर्मों का उपशम तो एक साथ नहीं होता है। हमने कल कितने प्रकार देखे थे उसके, क्षय के, औपशमिक के, औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र भेद देखे थे। औपशमिक चारित्र के कितने भेद देखे थे? हाँ, 7। पहले नपुंसक वेद का उपशम किया, फिर स्त्री वेद का, फिर पुरुष वेद का, फिर पुरुष वेद के साथ 6 नौकषाय का, फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे 7 हमने स्थान अलग अलग देखे थे। वही प्रश्न है कि एक साथ तो सबका नहीं होता है, तो सबको 8, 9, 10 सबको क्यों उपशम भाव कहते हो आप? उसका समाधान नहीं, क्योंकि कुछ कषायों के उपशमन किए जाने से उत्पन्न हुआ है उपशम परिणाम जिनके, ऐसे अनिवृत्तिकरण, बादर सांप्राय और सूक्ष्म सांप्राय संयत के अनिवृत्तिकरण के बाद कॉमा नहीं चाहिए, क्योंकि अनिवृत्तिकरण बादर सांप्राय पूरा एक नाम है। क्या कहते हैं? अनिवृत्तिकरण बादर सांप्राय 9वां गुणस्थान। सूक्ष्म सांप्राय संयत के उपशम भाव का अस्तित्व मानने में कोई विरोध नहीं, ये भी हमने चर्चा कल की थी कि अपूर्वकरण गुणस्थान में कितने कर्मों का क्षय या उपशम होता है? एक भी नहीं। तो इसलिए यहाँ 9वां और 10वें गुणस्थान का नाम लिया। शंका, नहीं उपशमन किया है किसी भी कर्म का जिसने, ऐसे, वो ए के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए, ऐसे अपूर्वकरण संयत के औपशमिक भाव कैसे माना जा सकता है? प्रश्न पूछा ना ये? नहीं, क्योंकि अपूर्वकरण परिणामों के द्वारा प्रति समय असंख्यात गुणश्रेणी रूप से कर्मस्कंधों की निर्जरा करने वाले तथा स्थिति और अनुभाग कांडकों को घात करके कषायों की स्थिति और अनुभाग को क्रम से संख्यात और अनंत गुणित हीन करने वाले, स्थिति को संख्यात गुणाहीन करते हैं और अनुभागों को अनंत गुणाहीन करते हैं। वो कौन से किसके द्वारा करते हैं? स्थिति कांडक घात के द्वारा और अनुभाग कांडक घात के द्वारा। स्थिति निषेकों में कही जाती है, एक दो तीन चार जो निषेक क्रम से जो है सत्ता में पड़े हुए जो कर्मों के निषेक है परमाणु, स्थिति को बतलाने वाली जो रचना नहीं, अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है खाली, है ऐसे कोई अंदर लाइन सर कर्म खड़े नहीं होते हैं। तो स्थिति कांड घात अनेक निषेकों के परमाणु उसका घात होकर अपकर्षण द्वारा नीचे सर्वत्र दिए जाते हैं और इतनी सारी स्थिति एक साथ कम हो जाती है, उसको कहते हैं स्थिति कांडक घात। ये स्थिति की अपेक्षा हुआ। अभी इन सभी निषेकों में अनुभाग की अपेक्षा अगर हम बात करेंगे, हर एक में हर एक टाइप के अनुभाग वाले हैं, कम से लेकर अधिक अनुभाग तक, उसको हम अलग से बताएंगे। हीन अनुभाग से अधिक 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 अनुभाग वाले इसको स्पर्धक कहेंगे। तो उनके भी अनेक जो अनुभाग जो है वो एक अंतर्मूर्त घटकर कम अनुभाग वाले स्पर्धक बन जाते हैं। यहाँ तो कुछ कम होती है स्थिति और यहाँ तो अनंत गुणाहीन अनुभाग हो जाता है। अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग श्रेणी में हाँ सत्ता में ज्यादा है, वो हर समय उसकी हीनता चलती रहती है। हाँ अप्रशस्त कर्मों में ये श्रेणी की बात हो रही है। तो ये अनुभाग कांडक घात और ये स्थिति कांडक घात, उसके द्वारा स्थिति तो संख्यात गुणाहीन होती जाती है और अनुभाग जो है वो अनंत गुणाहीन हो जाता है। तथा यानी आठवें गुणस्थान को यहाँ क्यों लिया, उसमें इसकी बात चल रही है, क्योंकि आठवें गुणस्थान में भी ये महान कार्य हो रहा है। वहां असंख्यात गुण श्रेणी कर्म स्कंधांग की निर्जरा भी हो रही है। कौन कौन से कर्मों की निर्जरा हो रही है यहाँ पर आठवें में? सभी की ज्ञानावरण, आयु को छोड़कर सभी की। अभी वहां चारित्र मौनी की भी लेना, जब तक उसका उपशम करेंगे तो उसका उदय भी रुक गया और उसकी यानी निर्जरा भी रुक गई, वहां तो सभी उपशमित हो जाएंगे। परंतु आठवें में बहुत महान कार्य हो रहा है। ये जो नौवें में उपशम करने का या क्षय करने का जो कार्य होगा उसका सब बेस उसका यहाँ ही चल रहा है, सभी पूर्व तैयारी उसकी। इसमें औषमिक भाव क्यों घटित किया है उसका उत्तर चल रहा है। तो असंख्यात गुणा कर्म निर्जरा भी हो रही है, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात के द्वारा अनुभाग अनंत गुणाहीन हो रहा है और स्थिति संख्यात गुणाहीन होती जा रही है। तथा उपशमन क्रिया का प्रारंभ करने वाले ऐसे अपूर्व करण संयत के उपशम भाव के मानने में कोई विरोध नहीं है। यानी जो नवे में जो कोई क्रिया होने वाली है उसका प्रारंभ जो है बेसिक उसकी तैयारी यहीं से शुरू हो जाती है। शंका, कर्मों के उपशमन से उत्पन्न होने वाला भाव औपशमिक कहलाता है, किंतु अपूर्व करण संयत के कर्मों के उपशम का अभाव है इसलिए उसके औपशमिक भाव नहीं मानना चाहिए। समाधान, नहीं, क्योंकि उपशमन शक्ति से समन्वित यानी उससे युक्त अपूर्व करण संयत के औपशमिक भाव के अस्तित्व को मानने में कोई विरोध नहीं है। ये उपशमन शक्ति है उसमें, तभी तो वो कार्य प्रारंभ कर दिया। तो अपने प्रश्नों का उत्तर भी आ गया ना, कल हमने चर्चा की थी, आठवें में कोई क्षय या उपशम है ही नहीं है, फिर भी उसको वहां से कार्य शुरू हुआ था इसलिए उस अपेक्षा से लिया है। इस प्रकार उपशम होने पर उत्पन्न होने वाला औपशमिक कहलाता है और कर्मों के उपशमनार्थ उत्पन्न हुआ भी भाव औपशमिक कहलाता है। देखो यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिया, क्या उपशम होने पर तो उपशम औपशमिक कहेंगे ही उसको, और उपशमनार्थ यानी उपशम करने के लिए, उपशमनार्थ हम कहते हैं भोजनार्थ हम आए स्वाध्यायार्थ, वैसे उपशमनार्थ उत्पन्न हुआ भाव भी औपशमिक कहलाता है, यह बात सिद्ध है। अथवा भविष्य में होने वाले उपशम भाव में भूतकाल का उपचार करने से, क्योंकि वो क्रिया आरंभ हो गई ना, अभी तो हम चावल धो रहे हैं और किसी ने पूछा क्या कर रहे हैं, तो भात पका रही हूँ, तो पकने की क्रिया भी दूर है, पहले से उसमें उपचार किया जाता है, वैसे अपूर्वकरण के औपशमिक भाव बन जाता है। जिस प्रकार की सर्व प्रकार से असंयम में प्रवृत्त हुए चक्रवर्ती तीर्थंकर के तीर्थंकर यह व्यपदेश बन जाता है। क्या कहा, कोई तीर्थंकर चक्रवर्ती भी है, मालूम है आपको ऐसे कोई तीर्थंकर जो तीर्थंकर भी है और चक्रवर्ती भी है इसे? हाँ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, चक्रवर्ती भी है और तीर्थंकर भी है, और कौन थे? कामदेव भी थे। हाँ, तो चक्रवर्ती पद में वो तो असंयम भाव में थे, तभी भी उनको क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर तो होने वाले हैं, अभी तो राजा अवस्था में है, फिर भी उनको तीर्थंकर कहेंगे क्योंकि वो होने वाले हैं। जैसे श्रेणिक राजा अभी नारकी है, उसको तो हम तो श्रेणिक राजा नाम से बुलाते, पूर्व के नाम से, और कहते हुए हमारे पहले तीर्थंकर हैं। हाँ, दोनों लगाते वहां पर, वो है तो नारकी, कहते हैं श्रेणिक राजा, और ऐसा भी कहते कि हमारे पहले तीर्थंकर है। हाँ, उसका वर्तमान नहीं गिनते, ये द्रव्य निक्षेप कहलाता है। हाँ, कह सकते हैं ना, भावी नैगम नय, वो नय की अपेक्षा हम कहेंगे, उसको नय कहा, कथन को नय कहा, परंतु वो नय का विषय क्या है? वो निक्षेप है। निक्षेप तो वस्तु में होता है और नय तो ज्ञान में होता है, ये कथन में होता है। तो कथन को हम भावी नैगम नय, भूत नैगम नय नाम देंगे, और वो नैगम नय कौन से, किसको जाने, कौन से निक्षेप को जान रहे हैं, तो वो द्रव्य निक्षेप की बात करेंगे वहां। देखो 9 नंबर का सूत्र, अभी क्षपकों की बात करेंगे। चदुन्नम खवा सजोगी केवली अजोगी केवली ती को भावो खयो भावो। चारों क्षपक सयोगी केवली और अयोगी केवली, यह कौन सा भाव है? क्षायिक भाव है। अब यहां भी ऐसा ही समझना, आठवें गुणस्थान में कितने प्रकृतियों का क्षय होता है? किसी भी नहीं। और तेरहवें में? हाँ, नहीं होता। हाँ, तेरहवें प्रकृति में, तेरहवें गुणस्थान में कितने प्रकृतियों का क्षय किया उसने? एक भी नहीं, कुछ नहीं करेंगे, क्षय करके वो हो गया है। तेरवा गुणस्थान, वो ज्ञानावरणादि आदि सभी का क्षय करके उत्पन्न हुआ, उस गुणस्थान में कोई क्षय का और आगे कार्य नहीं हो रहा है, वो जाके 14वें के अंत में होगा, बराबर? नहीं समझ में आया? चार घाती कर्मों का तो क्षय हो चुका, अब चार अघातियां बाकी हैं, तो उसमें से 13वें गुणस्थान में कुछ काम हल्का कर देवे ना, नहीं होगा। देखो, चारों क्षपक सयोगी और अयोगी केवली कौन सा भाव है? क्षायिक भाव है। शंका, घाती कर्मों के क्षय करने वाले सयोगी केवली और अयोगी केवली के क्षायिक भाव भले ही रहा आवे, क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त के भी क्षायिक भाव रहा आवे, क्योंकि उसके भी मोहनीय कर्म का क्षय हो गया है, जो हो चुका है उसकी बात कर रहे हैं। 12वें गुणस्थान वाले को मोहनीय का क्षय करके 12वें में आया है, और 12वें के अंत में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षय करके 13वां गुणस्थान प्राप्त होगा, तो 12वें 13वें में तो एक क्षायिक भाव मानने को तैयार है, क्षय हुआ। किंतु सूक्ष्म सांप्राय आदि शेष क्षपकों के क्षायिक भाव मानना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कोई भी कर्म का पूरा क्षय नहीं हुआ है वहां, क्षय का कार्य चल रहा है भले, परंतु क्षय नहीं हुआ है, मोहनीय अभी बाकी है, 10वें तक अभी मोहनीय बाकी है ना, मोहनीय ना ये ज्ञानावरण सभी कर्म बाकी है वहां, 10वें गुणस्थान में सभी कर्म बाकी है, नहीं है? हाँ, क्योंकि उनमें किसी भी कर्म का क्षय नहीं पाया जाता, ये पूर्ण क्षय की बात, मोहनीय कर्म है सच, उसका क्षय नहीं पाया जाता, इतना ही कह रहा है। वैसे 9वें में बहुत सारे कर्मों का क्षय करते करते आगे बढ़ा है, उसकी बात इसने नहीं ली है, पूरा एक कर्म ले लिया, मोहनीय का अभी पूरा क्षय नहीं हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि मोहनीय कर्म के एक देश के क्षपण करने वाले बादर सांप्राय और सूक्ष्म सांप्राय क्षपकों के भी कर्मक्षय जनित भाव पाया जाता है। यहाँ भी 9वें और 10वें गुणस्थान की बात की, 9वें गुणस्थान में भी बहुत सारे कर्मों का क्षय हो चुका और 10वें में भी कर रहा है वो, तो उस अपेक्षा से उनके पाया जाता है कर्मक्षय जनित भाव पाया जाता है। एक देश है उसका पार्ट, उसमें कुछ प्रकृतियों का वहां क्षय करते करते आगे बढ़ा है। तो क्या केवल घाती कर्मों का क्षय हो गया, क्या अघाती भी कुछ क्षय हो गए? हाँ, नाम कर्म की 13
और 3 आयु, अगर शपक इस पर चढ़ रहा है तो।
हाँ, यानी 3 आयु तो बांधी ही नहीं, और ये दर्शन आदि दर्शन यानी वो क्षायिक समय तो करके चढ़ाता वगैरह आदि, तो अघाती में से किस किस का क्षय किया? नाम कर्म की 13 का। और ये भी त्यानक उद्याधिक 3 लिए ना, वो उसका क्षय भी पहले हो जाता है, दर्शनावरण का पहले हो जाता है, और बाद में वो रिमेनिंग आघाती की बात बराबर है आपकी 13 की, परंतु वो दर्शनावरण जो बाद में वो करने वाला है क्षय, उसके भी पहले क्षय हो चुका उसका।
हाँ,
16 हो गया। शंका, किसी भी कर्म के नष्ट नहीं करने वाले, ये वही प्रश्नोत्तरी चल रही है जो उपशम भाव पर घटाई थी। किसी भी कर्म के नष्ट नहीं करने वाले अपूर्व कर्ण संयत के क्षायिक भाव कैसे माना जा सकता है? नहीं, क्योंकि उसके भी कर्म क्षय के निमित्तभूत परिणाम पाए जाते हैं। यहाँ पर भी कर्मों के क्षय होने पर उत्पन्न होने वाला भाव क्षायिक है, तथा कर्मों के क्षय के लिए उत्पन्न हुआ भाव क्षायिक है। उपशम पर जो परिभाषा घटाई थी वैसी यहाँ भी है। ऐसी दो प्रकार की शब्द व्युत्पत्ति ग्रहण करना चाहिए, यानी शब्द कैसा तैयार हुआ क्षायिक, उसकी बात यहाँ चल रही है। अथवा उपचार से अपूर्व करण संयत के क्षायिक भाव मानना चाहिए, क्योंकि वो शपक श्रेणी चल रहा है तो उपचार से उसमें भी वो क्षायिक भाव घटित होगा। शंका, इस प्रकार सर्वत्र उपचार के आश्रय करने पर अति प्रसंग दोष क्यों नहीं प्राप्त होगा? क्योंकि नहीं, क्योंकि प्रत्यासत्ति अर्थात प्रत्यासत्ति का ही अर्थ क्या है? नजीकता। समीपवर्ती अर्थ के प्रसंग से, समीपवर्ती अर्थ है ना, अभी वे 8वें में से 9वें में जाने वाला है, और वो 9वें की पूर्व तैयारी सब 8वें में हो चुकी है, वो उसके समीप वाला है, उससे अति प्रसंग दोष का प्रतिषेध हो जाता है। प्रतिषेध यानी निषेध, यानी यहाँ अति प्रसंग दोष नहीं लगता है। इस प्रकार ओघ भावानुगम समाप्त हुआ, ओघ में भावों की चर्चा समाप्त हुई। तो इसमें तो ये दर्शन मुनि की अपेक्षा पहले 4 गुणस्थानों के भाव बताए, और चारित्र मुनि की अपेक्षा आगे के गुणस्थानों की अपेक्षा बात बताए। अब आदेश यानी मार्गणाओं में भाव लगाएंगे। आदेशेण गय्याणुवादेण निरगय्ये नेरयेषु मिच्छादिट्ठित्ति को भावो ओदयो भावो। अभी तो यह आसान है, हमने प्रत्येक गुणस्थान का भाव देखा था, अब गति में गुणस्थानों के भाव बताने। आदेश की अपेक्षा गति मार्गणा के अनुवाद से नरक गति में नारकियों में मिथ्या दृष्टि कौन सा भाव है? औदयिक भाव है, क्योंकि वहां पर मिथ्यात्व के उदय से उत्पन्न हुआ अश्रद्धान रूप परिणाम पाया जाता है। ये जो अश्रद्धान रूप परिणाम है, मिथ्यात्व कषाय जो मिथ्यात्व जो परिणाम है वो औदयिक भाव है। शंका, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से, यानी यहाँ भी शंकाकार पूछेंगे, ये तो सादी मिथ्या दृष्टि है मोहनी की, उसमें दर्शन मोहनी की तो 3 है और सभी की लेगी तो 28 प्रकृतियां हैं, तो 3 पर वो 2 प्रकृतियों का तो उदयाभावी क्षय बताएगा और मिथ्यात्व का उदय बताएगा, तो उसको क्यों नहीं घटित करना, ऐसा प्रश्न पूछने वाला है ऐसा लगता है। देखो, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से, अब सम्यक प्रकृति पर भी यही बात होगी, सम्यक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से अथवा अनुदय उपशम से, और मिथ्यात्व प्रकृति के स्पर्धकों के उदय से सर्वघाती मिथ्या दृष्टि भाव उत्पन्न होता है, इसलिए उसे क्षयोपशमी क्यों न माना जाए? औदय के बदले उस पर क्षयोपशमीपना घटित करो, ऐसा कहता है उसका समाधान। न तो सम्यक्त्व के देशघाती और सम्यक मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय क्षय अथवा सदवस्था रूप उपशम अथवा अनुदय रूप उपशम मिथ्या दृष्टि भाव का कारण है, क्योंकि उसमें व्यभिचार दोष आता है, यानी उन दोनों का उपशम उदय नहीं हो रहा है, इसलिए मिथ्या तो भाव उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं है। अनुदय रूप यानी सदवस्था रूप उपशम, उदय नहीं होना वाला उपशम, जो जिससे नियमतः उत्पन्न होता है वह उसका कारण होता है। यानी मिथ्या तो भाव क्यों है, तो नियम से मिथ्या तो कर्म के उदय से हुआ है, अन्य दो प्रकृतियों के उपशम या अनुदय से नहीं हुआ है। यदि ऐसा न माना जावे तो अनवस्था दोष का प्रसंग आता है। यदि यह कहा जाए कि मिथ्यात्व के उत्पन्न होने के काल में जो भाव विद्यमान है वे उसके कारणपने को प्राप्त होते हैं, तो फिर ज्ञान दर्शन असंयम आदि भी मिथ्यात्व के कारण हो जावेंगे। क्या कहा, मिथ्यात्व के होने के काल की बात है, जिस काल में मिथ्यात्व हो रहा है उस काल में जो भी भाव है वे उसके कारणपने को प्राप्त होते, ऐसा अगर मानेंगे तो ज्ञान दर्शन और असंयम भी वहाँ है, वो अज्ञान भी है वहाँ, मिथ्या दृष्टि के जो अन्य भाव है ना असंयम आदि, तो वे भी मिथ्यात्व के कारण हो जाएंगे। किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि उस प्रकार का व्यवहार नहीं पाया जाता है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि मिथ्या दृष्टि का कारण मिथ्यात्व का उदय ही है, क्योंकि उसके बिना मिथ्यात्व भाव की उत्पत्ति नहीं होती। यानी कारण हम उसी को कहेंगे कि जिसके होने पर यह होता है और जिसके नहीं पर वो नहीं होगा। यही बात जो पहले भी हमने चर्चा की थी वही यहाँ पर बात है कि मिथ्यात्व ये औदयिक भाव है, अन्य भाव नहीं है। अब शासन सम्मादिट्ठित्व को भावो पारिणामियो भावो, ये जो हमने जो देखे थे, हमने तो वहां तो 14 ही ओघ में देखे थे। अब ये नरक गति की बात है तो उसमें चार गुणस्थानों की बात करेंगे, तो उसमें वही फिर से दोबारा लगाएंगे। नारकी सासाधन सम्यक दृष्टि हुआ है, दृष्टि ध्रुव करो उसको, नारकी सासाधन सम्यक दृष्टि, यह कौन सा भाव है, पारिणामिक भाव है। शंका, अनंत अनुबंधी चारों कषायों के उदय से ही जीव सासाधन सम्यक दृष्टि होता है, इसलिए उसे औदयिक भाव क्यों नहीं कहते। ये प्रश्न और समाधान पहले भी हो चुका है, कोई एक्स्ट्रा अधिक बात आए तो हम चर्चा करेंगे, अभी तो पढ़ते हैं। क्योंकि दर्शन मोहनीय निबंधनक आदि के चारों ही गुणस्थानों में चारित्र को आवरण करने वाले मोह कर्म के तीव्र उदय से असंयम भाव के प्राप्त होने पर भी चारित्र मोहनीय की विवक्षा नहीं की गई है। पहले चार गुणस्थान दर्शन मोहनीय के अपेक्षा से ही है, चारित्र मोहनीय का भले तीव्र भी कोई उदय हो तो उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। अतएव विवक्षित दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से, उपशम से, क्षय से अथवा क्षोपशम से सासाधन समय दृष्टि नहीं होता है, इसलिए वह पारिणामिक भाव है। यानी वो दर्शन मुनि का उपशम हुआ इसलिए यहाँ सासाधन हुआ, ऐसा नहीं है। दर्शन मुनि तो इसका तो कोई कारण ही नहीं है, इसलिए उसको पारिणामिक भाव कहा। अब सम्मा मिच्छा दिट्ठित्ति को भावो खवो व समीओ भावो, देखो ये ऐसी बात है, पहले चार गुणस्थान है उसमें दर्शन मोह की अपेक्षा लगती है। जैसे हम सम्यक्त्व की बात करेंगे तो जब सम्यक्त्व होता है तो दर्शन मोहनीय में क्या हो रहा है, या तो औपशमिकपना है या क्षौपशमिक या शायिकपना घटित होता है। तो उसमें क्षायिक भाव लगाएंगे। अब यहाँ दूसरे गुणस्थान की बात चल रही है, दूसरा गुणस्थान क्यों हुआ है, तो चारित्र मोह के कारण हुआ है, दर्शन मोह के कारण हुआ है क्या, नहीं, तो ये दर्शन मोहनी का पारिणामिक भाव है। दर्शन मोहनी ने कुछ नहीं किया उसके लिए, और चार गुणस्थानों में तो दर्शन मोहनी का ही कारण बताने जा रहे हैं हम, तो दर्शन मोह उसके कारण नहीं है ये बात बतानी है, तो उसके लिए कहेंगे यहाँ उसका पारिणामिक भाव चल रहा है।
देखिए जब हम 14 गुणस्थान को देखते हैं तो 14 गुणस्थान किस किस अपेक्षा से उसका वर्णन किया गया है, ये जब बात आती है, तो वहाँ पर यह बताया जाता है कि पहले चार गुणस्थान दर्शन मोहिनी कर्म की अपेक्षा से उसका विभाजन किया गया है। अब ऐसा है कि जब दूसरे गुणस्थान में आने वाला जीव वह तो उपशम सम्यक दृष्टि होता है, और जब उपशम सम्यक दृष्टि होता है तब जब कुछ काल के लिए यानी छः अवली अधिक से अधिक समय या कम से कम एक समय, उस समय वह जीव सम्यक्त से गिर जाता है। उसका कारण है अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ में से किसी एक का उदय, और अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी कर्म के प्रकृतियां हैं। तो वहां कहते हैं कि दर्शन मोहिनी की अपेक्षा नहीं लगती है, उस अपेक्षा से उसे पारिणामिक भाव कहने में आता है। क्योंकि पारिणामिक भाव किसको कहा जाएगा कि जिसे कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है। और यहां अभी बताया ना आपको कि दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से उपशम से क्षय से अथवा क्षयोपशम से सासाधन सम्यक दृष्टि नहीं होता है, इसलिए उसे परिणामिक भाव कहेंगे।
मेरा प्रश्न था कि चौथे गुणस्थान से लिया था मैंने कि अनंतानंदी का जिसे शेय कर दिया है और अनंतानंदी
तो वो सब वो सासाधन में आएगा ही नहीं ना।
ठीक है, मतलब मेरा जो प्रश्न जो था,
हां
ठीक है, सासाधन का नहीं है, लेकिन जो चौथे गुणस्थान में भी अपना संयम बता रहे हैं, चौथे गुणस्थान तक एक से चार गुणस्थान को असंयम में लिया है,
उसको सत्ता सत्ता नहीं है, क्षय है, क्षय की अपेक्षा लगी ना। वहां दर्शन मोहिनी का क्षय है तो क्षय की अपेक्षा लगी ना उधर।
वो असंयम की तो बात हमने की थी, असंयम तत्व उसको औदयिक भाव कहा था, असंयम तत्व को औदयिक भाव कहा था, वहां संयम के घाती कर्मों का उदय है, वहां उसकी बात की थी। अप्रत्यक्ष अनावरण का उदय है ना, वह संयम का घात करने वाले, उसके बाद अभी चौथे में आएगी। अभी तो हम सासाधन की बात कर रहे हैं, उसमें पारिणामिक पना क्यों घटित हो रहा है? क्या उसने औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया इसलिए वो सासाधन हुआ है? औपशम से ही गिर कर आया, परंतु उपशम किया इसलिए सासाधन हुआ क्या? उसका सासाधन होने का कारण क्या? चारित्र मोहिनी में जाता है, दर्शन मोहिनी ऊपर उसका दोष नहीं है, तो दर्शन मोहिनी के उपशम क्षय उदय से ये भाव नहीं हुआ है, इसलिए पारिणामिक भाव कहा। इतनी ही लगाना, अन्य कर्मों की अपेक्षा इसकी अपेक्षा है नहीं। अब उस पारिणामिक भाव की चर्चा नहीं है यहाँ, ये आप पहले दिन नहीं थी, इसमें ही वो पारिणामिक भाव की चर्चा आई थी, हमने वो उसको बहुत डिटेल में देखा था। देखो ये पेज नंबर 196 हुए, 196 पृष्ठ पर अंत में शंकाकार ने यही पूछा था, ये पारिणामिक भाव ऐसा घटित नहीं होता है, तो उसका समाधान किया नीचे की तीन लाइन, वह इस प्रकार है, जो कर्मों के उदय उपशम क्षय और क्षयोपशम के बिना अन्य कारणों से उत्पन्न हुआ परिणाम है। अन्य कारण नहीं है ऐसा नहीं कहा, विशिष्ट कर्म के क्षय उपशम से नहीं हुआ है, अन्य भले कर्म उसमें निमित्त उसकी बात नहीं है, दर्शन मोहिनी का कुछ उसमें निमित्त नहीं है, तो दर्शन मोहिनी की अपेक्षा पारिणामिक भाव है। हाँ, इतना ही लेना उसमें। ये दूसरे तीसरे गुणस्थानों की बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है, 196 के आगे आप फिर दोबारा पढ़ना, यही बात थोड़े में शॉर्ट में अभी भी बता रहे वो। कभी तीसरे गुणस्थान पर सम्मा मिच्छिट्टिति को भावो खवो समयो भावो, नारकी सम्यक मिथ्यादृष्टि यह कौन सा भाव है? क्षयोपशमिक भाव है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व कर्म के उदय होने पर भी सम्यक दर्शन का एक देश पाया जाता है। वहां उन्होंने कहा था श्रद्धान अश्रद्धान ऐसा मिश्र परिणाम है, इसलिए यहाँ क्षयोपशमिक भाव बताया था। फिर शंका, जात्यंतरत्व यानी भिन्न जातीयता को प्राप्त सम्यक मिथ्यात्व भाव में, यानी वो जान ना ही सम्यक्त्व है ना ही अभी मिथ्यात्व है, तो भिन्न ही जाति का परिणाम है, तो उसमें अंशांशी यानी अंश अंशी यानी अवयव अवयवी भाव नहीं है, इसलिए उसमें सम्यक दर्शन का एक देश नहीं है। सम्यक दर्शन ये पूरा अंश हुआ और उसका अंश यानी अंशी ऐसे यहाँ नहीं घटित होगा, ऐसे उसका कहना है। समाधान, अभेद की विवक्षा में सम्यक मिथ्यात्व के भिन्न जातीयपना भले ही रही आवे, किंतु भेद की विवक्षा करने पर उसमें सम्यक दर्शन का एक भाव यानी अंश है ही, क्योंकि श्रद्धान और अश्रद्धान ऐसा मिला जुला परिणाम है वह। यदि ऐसा न माना जाए तो इसके जात्यंतरत्व के मानने में विरोध आता है, अन्य जाति का उसको नहीं कह सकते, और ऐसा मानने पर सम्यक मिथ्यात्व के सर्वघातीपना भी विरोध को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व को भिन्न जातीयता प्राप्त होने पर सम्यक दर्शन के एक देश का अभाव है, इसलिए उसके सर्वघातीपना मानने में कोई विरोध नहीं आता। यानी सर्वघाती क्यों, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति सर्वघाती क्यों है, क्योंकि वहाँ सम्यक्त्व का तो घात करती है, इसलिए उसको सर्वघाती कहा। इसकी भी चर्चा 190 पहले आ चुकी है, 199 पृष्ठ पर। कितने ही आचार्य अभी वो मानते हैं क्षोभ क्षमपणा क्यों, क्योंकि अन्य दो प्रकृति सत्ता में पड़ी है और सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, इसलिए क्षोभ क्षम कहो तो ये बात घटित नहीं होती, ऐसा कहेंगे। कितने ही आचार्य मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से तथा सम्यक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से और उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम अथवा अनुदय रूप उपशम से और सम्यक मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से सम्यक मिथ्यात्व भाव होता है, इसलिए उसके क्षयोपशमिकता कहते हैं। कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं, परंतु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि उक्त लक्षण सव्यभिचारी है, यानी दोष है, सदोष है। ऐसा यदि हम कहेंगे कि मिथ्यात्व का और सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है, परंतु वो अंदर पड़े है और सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, इसलिए उसको क्षोभशम कहो, तो ये बात घटित नहीं होती, क्योंकि उसमें उस लक्षण में दोष आता है। व्यभिचार पहले प्ररूपण किया जा चुका है, देखो पृष्ठ 199, इसलिए यहाँ नहीं कहते। कल परसों उसकी बात हमने की थी और विस्तार से की थी। अब चौथी गुणस्थान की बात करेंगे। ये तो इसमें और उसमें कोई चर्चा में फर्क नहीं है, नारकी में भी यही बात करेंगे, देव में भी यही बात करेंगे, मनुष्य में भी ऐसी बात करेंगे। हो गया ने जो भाव वहां बताया है, पहले चार गुणस्थानों में वही भाव घटित हो गए। अभी कौन से गति में कितने भाव है, अभी हर एक पर घटेंगे ना आगे आगे। असंजत सम्मादिट्ठिति को भावो वसमियो वा खयो वा कहो समयो वा भावो। नारकी असंयत समय दृष्टि यह कौन सा भाव है, औपशमिक भाव भी है, क्षायिक भाव भी है, क्षायोपशमिक भाव भी है। जैसे यानी वहां तीनों ही प्रकार के सम्यक तो प्राप्त होते हैं, या ये सूत्र से हमको सिद्ध हो जाता है ना, नारकियों में भी औपशमिक प्रथम उपशम सम्यक तो होगा, वेदक सम्यक तो होगा, क्षायिक सम्यक तो भी, यानी क्षायिक समय दृष्टि वहाँ होगी कि नहीं होगी नरक में, हाँ वे भी पाए जाएंगे, हाँ वहाँ नया नहीं होगा, वहाँ भी क्षायिक समय दृष्टि होगी। कौन से नरक में होगे, पहले, हाँ और प्रथम उपशम वाले, हाँ और वेदक वाले भी नहीं, हाँ सातों में देखो जैसे अधकरण आदि तीनों ही करणों को करके, अधकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये तीन करण जिसको करण परिणाम कहते हैं, वो करके सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले जीवों के औपशमिक भाव होता है। जब जब औपशमिक सम्यक्त्व होता है, ये तीन करण पूर्वक ही होता है, क्योंकि वहां पर दर्शन मोहिनी कर्म के उदय का अभाव है। औपशमिक में दर्शन मोहिनी का अभाव ही, एक अंतर्मूर्त के लिए किसी प्रकृति का वहां उदय नहीं है, दर्शन मोहिनी की बात चल रही। दर्शन मोहिनी कर्म के क्षपण करने वाले सम्यक दृष्टि जीवों के क्षायिक भाव होता है, क्योंकि वह अपने प्रतिपक्षी कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। प्रतिपक्षी कर्म का क्षय हो चुका है तो उसका उदय कोई होने की सवाल ही नहीं है, इसलिए वहां वो क्षायिक भाव कहलाता है। अन्य सम्यक दृष्टि जीवों के, अन्य अभी कौन रह गए, वेदक सम्यक दृष्टि, तो अन्य सम्यक दृष्टि जीवों के क्षावशमिक भाव होता है, क्योंकि प्रतिपक्षी कर्म के उदय के साथ उसके आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है। यानी उनका उदय भी बना रहे, किसका कौन है अभी, सम्यक प्रकृति का उदय भी बना रहे और ये आत्मस्वरूप की प्राप्ति भी हो जावे, तो ये वेदक सम्यक तो कहलाएगा। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, ये ऐसे ही कहेंगे अभी। ये क्षोभपना क्यों घटित होता है, तो अन्य दो प्रकृतियों का उदय नहीं है, सम्यक प्रकृति का उदय, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व इन दोनों प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से अथवा अनुदय रूप उपशम से, तथा सम्यक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उदय से सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है, इसलिए उसके भी क्षावशमिकता कितने ही आचार्य कहते हैं, किंतु वह घटित नहीं होती है, क्योंकि वैसा मानने पर व्यभिचार देखा जाता है अथवा अति प्रसंग दोष आता है। यानी सम्यक्त्व जो उत्पन्न हुआ है वो सम्यक प्रकृति के उदय से नहीं उत्पन्न हुआ है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। उदयेन भावेन पुनः असंयदो, वहां पर हमने असंयतपना क्यों होता है, तो उसको कौन सा भाव घटित किया था पहले हमने, असंयतपना औदयिक भाव। किंतु नारकी असंयत सम्यक दृष्टि का असंयतत्व औदयिक भाव से है, चूंकि असंयम भाव संयम को घात करने वाले कर्मों के उदय से होता है, इसलिए असंयत यह औदयिक भाव है। इस अंत दीपक सूत्र से अतिक्रांत सर्व गुणस्थानों में, अतिक्रांत यानी अभी पहले वाले सब जो हमने पार चुके कर चुके हैं, चौथे में आए तो पहले तीनों ही लेना, उसमें अतिक्रांत सर्व गुणस्थानों में असंयतपना औदयिक है यह सूचित किया गया है। मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व तो औदयिक भाव है, परंतु वहां का असंयत्व भी, वो भी औदयिक भाव है। एवं पढ़माए पुढ़वीये नैरय्याणम, इस प्रकार प्रथम पृथ्वी में नारकियों के सर्व गुणस्थानों संबंधी भाव होते हैं। अब क्या नीचे के नारकियों में भी ऐसे ही भाव होंगे कि कुछ फर्क होगा? हाँ, नीचे में एक शायिक वाला नहीं होगा, चौथे गुणस्थान में एक शायिक का भाव नहीं होगा, क्योंकि देखो इस प्रकार प्रथम पृथ्वी में नारकियों के सर्व गुणस्थानों संबंधी भाव होते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि यह उदयिक भाव है, सासाधन सम्यक दृष्टि यह पारिणामिक भाव है, सम्यक मिथ्या दृष्टि यह क्षावशमिक भाव है, और असंयत सम्यक दृष्टि यह औपशमिक भाव भी है, क्षायिक भाव भी है, क्षावशमिक भाव भी है, तथा संयम घाती कर्मों के उदय से असंयत है। इस प्रकार नारक सामान्य की भाव प्ररूपणा से कोई विशेषता नहीं है, यानी पहले नारकियों की कोई विशेषता नहीं, कोई अंतर नहीं है। अब द्वितीय आदि की बात करेंगे। विधि आदि जाव सप्तमीय पुढ़वीय नारियेसु मिच्छादिट्ठी शासन सम्मादिट्ठी सम्मा मिच्छादिट्ठी न मोघम, पहले तीन गुणस्थानों में तो वही अपना अपना भाव जो बताया वो होगा। द्वितीय पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक नारकों में मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों के भाव ओघ के समान है, यह सूत्र सुगम है। यानी मिथ्या दृष्टि औदयिक भाव है, सासाधन सम्यक दृष्टि पारिणामिक भाव है, और सम्यक मिथ्या दृष्टि क्षावशमिक भाव है। अभी चौथे में असंयत सम्मादिट्ठि को भावो उसमीवो वा खवो समीवो वा भावो, या क्षायिक को छोड़ दिया है। ये तो आसान है ना, अभी तो कुछ भावों में पहले वो क्यों घटित किया था वो उसकी चर्चा है, अभी तो हर गति में हर उसमें ऐसे ही बता देंगे वो के समान। उक्त नारकों में असंयत समय दृष्टि यह कौन सा भाव है, औपशमिक भाव भी है और क्षावशमिक भाव भी है। चूंकि दर्शन मुनि के उदया भाव लक्षण वाले उपशम के द्वारा उपशम समय दृष्टि उत्पन्न होती है, इसलिए वह औपशमिक है। शंका, यदि उदया भाव को भी उपशम कहते हैं तो देवपना भी औपशमिक होगा, क्योंकि वह शेष तीनों देवगति नाम कर्म का उदय पाया जाता है, इसलिए तीनों गतियों में चाहिए ना, तिन्नम गयिनानुयोदया भवेन उपजमानत तदो। तीनों देवगति नाम कर्म, तीनों गतियों में चाहिए। हाँ देखो क्या ऊपर लिखा है, यदि उदया भाव उसमो उच्च तो देवत्तम भी ओवसमियम हो जम तिन्नम गयिन नुयदया भावे उपजमानता दो। उदय का अभाव पाया जाता है, तीनों देव तीनों गतियों में देखो उदया भाव को भी उपशम कह दे तो देवपना भी औपशमिक होगा, क्योंकि वह इन्हें देवपना तीनों, इसलिए देव पर एक ऑप्शन नहीं गए। गई न अनुदया भावे न, शेष तीनों गतियों में देवगति नाम का अनुदय पाया जाता है, ऐसा चाहिए। गई न अनुदया भावे न उपज मानता दो, तिन्नम गई न अनुदया भावे न। अच्छा वह ठीक है, तीनों गति नाम कर्म का उदय पाया जाता है कि अनुदय पाया जाता है। देखो उदया भाव की भी उपशम कहते हैं, देवपना भी औपशमिक होगा। अच्छा विशेषार्थ, लिखा ना पांचवी लाइन में अनुदय प्राप्त शेष तीन गतियों का, शेष तीनों गति नाम कर्म का अनुदय पाया जाता है, ऐसा चाहिए। देखो देवपना भी औपशमिक होगा क्योंकि वह शेष तीनों गति नाम कर्म का अनुदय पाया जाता है। भावे न उपजमानो, विशेषार्थ पढ़ेंगे, ये वाक्य रचना कुछ गलत हो गई है, यानी वहाँ अन्य तीन गति नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता है, अनुदय पाया जाता है। क्या क्या लिखा है पढ़ना, हाँ ऐसा करना, वह शेष तीनों गतियों के उदय अभाव से उत्पन्न होता है, तीनों वह शेष तीनों, सब लिख रहे हैं, वह शेष तीनों आगे क्या लिखा है, गतियों के उदया भाव से उत्पन्न होता है। इसलिए देव पर्याय का औपशमिक नहीं कहा जा सकता। तीनों के आगे सब कुछ काट दो, ऐसा पढ़ो, वह शेष तीनों गतियों के उदया भाव से उत्पन्न होता है, इसलिए। अच्छा होता है, यानी उसमें वो तो उसका सुगेशन आ गया, इसलिए देव पर्याय का औपशमिक नहीं कहा जा सकता। देखो नारकी में देव की नहीं बात की, यदि उनका प्रश्न ऐसा है कि दर्शन मुनि का उदय नहीं होना ही उपशम भाव का कारण है, तो जब देवगति पर घटाया, देवगति नाम कर्म के उदय से देव पर्याय होती है, बराबर। यदि अन्य तीन गति नाम कर्म के अनुदय से देव पर्याय होती है ऐसा मानेंगे, उसका अनुदय कारण है, अभी विशेषार्थ में समझेंगे आप, बराबर। देखो विशेषार्थ पढ़ते, गति जाति आदि पिंड प्रकृतियों में से, ये पिंड प्रकृतियां क्या है, देखो ये कौन सी प्रकृतियों की बात है, हाँ पिंड नाम कर्म में ये पिंड प्रकृति और अपिंड प्रकृति है। 14 प्रकृति तो पिंड प्रकृति है, ग्रुप वाली प्रकृति। जैसे गति नाम कर्म चार प्रकार के, तो हम एक एक गति प्रकृति पिंड प्रकृति कहेंगे। गति है, जाति है, शरीर है, बंधन है, संघात है, सहनन है, ये सब जो क्या है पिंड प्रकृति है। तो गति जाति आदि पिंड प्रकृतियों में से जिस किसी विवक्षित एक प्रकृति के उदय आने पर अनुदय प्राप्त शेष प्रकृतियों का जो उसी प्रकृति में संक्रमण होकर उदय आता है उसे स्थिभुक संक्रमण कहते हैं। एक का तो उदय आता है, अभी जैसे हमारे मनुष्य गति नाम कर्म का उदय चल रहा है, तो सत्ता में तो सभी प्रकृतियां कहीं ना कहीं बांधी हुई पड़ी है। देवगति भी है, नरगति भी है, तिरंच गति के परमाणु भी पड़े हुए। उदय तो अभी मनुष्य गति का चल रहा है, तो अन्य जो तीन कर्म प्रकृति होगी उसकी अगर स्थिति पूरी होती है तो उदय में आने वाले हैं, तो वो मनुष्य गति रूप से संक्रमित होकर उदय में आते हैं, उसको स्थिभुक संक्रमण कहते हैं। उदय में आते आते एक एक निशे कुछ रूप होता है, जैसे वो ठिबक सिंचन कहते हैं ना, क्या इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, वैसे वो एक एक निशे कुछ रूप होते 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 उदय में आता है। जैसे एकेंद्रीय जीवों के उदय प्राप्त एकेंद्रीय जाति नाम कर्म में, अभी एकेंद्रीय जीवों का एकेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदय चल रहा है, अब उनकी सत्ता में द्विंद्रियादि जाति नाम कर्म पड़े हैं, तो वो क्या हो गए, एक एक उस रूप एकेंद्रीय जाति नाम कर्म होकर उदय में आएंगे। तो अनुदय प्राप्त द्विंद्रिय जाति आदि का संक्रमण होकर उदय में आना, गति नाम कर्म भी पिंड प्रकृति है, उसके चारों भेदों में से किसी एक के उदय होने पर अनुदय प्राप्त शेष तीनों गतियों का स्थिभुक संक्रमण के द्वारा संक्रमण होकर विपाक होता है। विपाक होता है ना, उदय होता है, यानी जिसका उदय चल रहा है अभी, हमारे पंचेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदय चल रहा है, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय चल रहा है, तो अन्य जो गति और जाति अंदर पड़ी है वो उस रूप से होकर उदय में आती है। प्रकृति में यही बात देवगति को लक्ष्य में रखकर कही गई है कि देवगति नाम कर्म के उदय काल में शेष तीनों गतियों का स्थिभुक संक्रमण के द्वारा उदय पाया जाता है। दर्शन मुनि कर्म की अवयव स्वरूप और देशघाती लक्षण वाली वेदक सम्यक्त प्रकृति के उदय से उत्पन्न होने वाला सम्यक दृष्टि भाव क्षावक्षमिक कहलाता है। वेदक सम्यक्त प्रकृति के स्पर्धकों की क्षय संज्ञा है, क्योंकि उसमें सम्यक दर्शन के प्रतिबंधन की शक्ति का अभाव है। सम्यक दर्शन को वो रोक नहीं सकता, सम्यक प्रकृति जो है वो सम्यक दर्शन की शक्ति को रोक नहीं सकती, उसका उदय भी होता रहे और सम्यक तो भी बना रहे, ये बात होती है। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व इन दोनों प्रकृतियों के उदयाभाव को उपशम कहते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त क्षय और उपशम इन दोनों के द्वारा उत्पन्न होने से सम्यक दृष्टि भाव क्षावक्षमिक कहलाता है। शंका, यहाँ क्षायिक भाव क्यों नहीं पाया जाता, कहाँ की बात चल रही, द्वितीय से न, हाँ दो से सात की बात है, पहले नरक में तो सिद्ध किया था क्षायिक भाव होता है नहीं, क्योंकि द्वितीय आदि पृथ्वियों में क्षायिक सम्यक दृष्टि जीवों की उत्पत्ति का अभाव है, कोई सम्यक्त्व के साथ द्वितीय आदि पृथ्वी में नहीं जाता, पहले पृथ्वी में भी जाने वाला कौन सा जीव होगा, हाँ कृतकृत्य वेदक होगा या क्षायिक सम्यक्ति होगा, वेदक सम्यक्त्व के साथ कोई नहीं जाएगा, नरक में भी नहीं जाएगा, तिरंच में भी नहीं जाएगा, ये पहले हमने देखा था उसको। ओदयेन भावेन पुनः असंयतो, किंतु उक्त नारकी असंयत सम्यक दृष्टियों का असंयतत्व औदयिक भाव से है। द्वितीय आदि पृथ्वियों के सम्यक दृष्टित्व को औपशमिक और क्षावक्षमिक इन दो संज्ञा वाले भावों को सुनकर वहाँ असंयत भाव के परिज्ञानार्थ, परिज्ञानार्थ है ना उसका ज्ञान करने के लिए, परिपूर्ण ज्ञान करने के लिए, अर्थ है ना उसके लिए, प्रश्न करने वाले शिष्य के संदेह को विनाश करने के लिए यह सूत्र आया है। जो बात ओघ में लिखी है वही पर सब जगह यही बात होने वाली है। द्वितीय आदि पृथ्वीगत असंयत समय दृष्टि नारकियों का असंयत भाव संयम घाती चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न होने के कारण औदयिक है। वहाँ जो असंयमपना है वो औदयिक भाव, हमने औदयिक भाव 21 गिने थे ना उसके विकल्प, उसमें असंयम को भी गिना था ना। तो ये संयम के घाती कर्मों का उदय है, चल रहा है संयम घाती कर्मों का उदय है। तथा इस सूत्र के द्वारा अतीत गुणस्थानों में यानी पहले दूसरे तीसरे में असंयत भाव के अस्तित्व का निरूपण किया गया है। ये नरगति की बात पूर्ण हुई, ये तो आसान है। अभी एक बार गुणस्थानों में भाव समझ लिए, अभी मार्गणा में समझना आसान है। अब तिर्यंच गति की बात करेंगे। तिरिक्ख गदिये तिरिक्ख पंचिंद्रिय तिरिक्ख पंचिंद्रिय तिरिक्ख पज्जत पंचिंद्रिय तिरिक्ख जोनिनीसु मिच्छादिट्ठि पौड़ी जाव संजदा संजदानम ओघम। तिर्यंच गति में तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी जीवों में मिथ्या दृष्टि से लेकर संयता संयत गुणस्थान तक भाव ओघ के समान है। अभी वही दोहराएंगे हमारे लिए, क्योंकि मिथ्या दृष्टि यह उदयिक भाव है, सासाधन सम्यक दृष्टि यह पारिणामिक भाव है, सम्यक मिथ्या दृष्टि यह क्षावक्षमिक भाव है, सम्यक दृष्टि यह औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव है। तीनों ही प्रकार के सम्यक दृष्टि वहाँ पाए जाते हैं तिर्यंचों में। इसलिए तथा औदयिक भाव की अपेक्षा वह असंयत है, यानी असंयतपना यह उदयिक भाव है। संयता संयत यह क्षायोपशमिक भाव है, वो भी हमने पहले देखा था क्षयोपशमपना कैसे घटित होता है। इस प्रकार ओघ से चारों प्रकार के तिर्यंचों की भाव प्ररूपणा में कोई भेद नहीं है। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी जीवों में भेद प्रतिपादन करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। तो क्या भेद हो सकता है? असंयत में क्या होगा? क्षायिक नहीं होगा, क्योंकि तिर्यंचों में क्षायिक उत्पन्न नहीं होता, और मरकर क्षायिक के साथ तिर्यंचों में उत्पन्न होने वाले पुरुष वेदी होंगे, स्त्री वेदी नहीं होंगे। नवरी विशेषो यानी परंतु ये विशेष है कि पंचिंद्रिय तिरख जोनिनीसु असंजत सम्मादिट्ठित्ति को भावो ओवसमयोवा खो समयोवा भावो। विशेष बात यह कि पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनियों में असंयत समय दृष्टि कौन सा भाव है? औपशमिक भाव है और क्षायोपशमिक भाव है, क्योंकि पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमतियों में उपशम सम्यक दृष्टि और क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीवों का ही पाया जाना संभव है। शंका, उनमें क्षायिक भाव क्यों नहीं संभव? समाधान, क्योंकि बद्धायुष्क क्षायिक सम्यक दृष्टि जीवों की स्त्री वेदियों में उत्पत्ति नहीं होती। यानी तिर्यंचों में कौन सा सम्यक दृष्टि यानी सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न होने वाला कौन सा जीव है? तो जिसने तिर्यंचायु बांधी है, बाद में जिसने सम्यक्त्व प्राप्त किया है और फिर क्षायिक सम्यक दृष्टि हुआ है या कृतकृत्य वेदक हुआ है, वही तिर्यंचों में उसने आयु बांधी थी इसलिए वहां उत्पन्न होगा, परंतु अभी वो पुरुष वेदी होगा, स्त्री वेदी नहीं होगा। तथा मनुष्य गति के अतिरिक्त शेष गतियों में दर्शन मोहनीय कर्म की क्षपणा का अभाव है, इसलिए पंचेंद्रिय तिर्यंच योनियों में क्षायिक भाव नहीं पाया जाता। यानी वहाँ के जो क्षायिक समय दृष्टि है वो मनुष्य गति वाले जीव क्षायिक करके ही वहाँ उत्पन्न होते हैं, जिन्होंने पहले तिर्यंचायु बांधी थी। ओदयेन भावेन पुनः असंयतो, किंतु तिर्यंच असंयत समय दृष्टियों का असंयतत्व औदयिक भाव से है, यह सूत्र सुगम है। अब ये अंतर से भी ये भाव सुगम हो गए ना। पहले गुणस्थानों में हम भावों की चर्चा की, अभी वही हर एक गति में इंद्रियों में उसके बताएंगे। मनुष्य गदिये मनुष्य मनुष्य पज्जत मनुष्यनिसो मिच्छा दिट्ठि पौड़ी जाव अजोगी केवलित्य ओघम। मनुष्य गति में मनुष्य मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक भाव ओघ के समान है। जो हमने 14 गुणस्थानों की बात की थी पहले, वही यहाँ पर लागू होगी, क्योंकि तीनों प्रकार के मनुष्यों संबंधी समस्त गुणस्थानों की भाव प्ररूपणा में ओघ के सकल गुणस्थानों से कोई भेद नहीं है। तो क्या यहाँ क्षायिक समय तो भी होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि वो उसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं ना तीनों वेद वाले। हाँ, शंका। लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य और लब्धि अपर्याप्तक तिर्यंच मिथ्यादृष्टि जीवों के भावों का सूत्र में प्ररूपण क्यों नहीं किया गया? अब वो तो आसान है ना, एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान है उसमें। नहीं, क्योंकि ओग संबंधी प्ररूपणा भाव प्ररूपणा से ही उनके भावों का परिज्ञान हो जाता है, इसलिए उनके भावों का सूत्र में पृथक निरूपण नहीं किया गया। यानी उसका मिथ्या दृष्टि बनाए और वो तो औदयिक भाव है, इसलिए उसको पृथक बताने की जरूरत ही नहीं थी। अब देवगति की बात करेंगे। देवगदीय देवेशु मिच्छादिट्ठि पहुड़ी जाव असंजत सम्मादिट्ठित्ति ओघम। देवगति में देवों में मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत समय दृष्टि तक भाव ओघ के समान है, क्योंकि देव मिथ्या दृष्टियों की औदयिक भाव से, देव सासाधन समय दृष्टियों की पारिणामिक भाव से, देव सम्यक मिथ्या दृष्टियों की क्षावशमिक भाव से और देव असंयत समय दृष्टियों की औपशमिक क्षायिक तथा क्षावशमिक भावों की अपेक्षा ओघ मिथ्या दृष्टि, सासाधन समय दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के भावों के साथ समानता पाई जाती है। यानी कोई अंतर नहीं है, जो पहले हमने ओघ में देखा वही यहाँ पर भी लागू होता है। अब देवों में अलग अलग विभाजन करके समझाएंगे। भवनवासीय वाणवेंतर ज्योतिषीय देवा देवियों सोधमीषाण कप्पवासी देवियों च मिथ्यादिट्ठि शासन सम्मादिट्ठि सम्मा मिथ्यादिट्ठि ओघम। भवनवासी वाणवेंतर और ज्योतिष्क देव एवं देवियां तथा सौधर्म ईशान कल्पवासी देवियां, इनके मिथ्यादृष्टि सासाधन समय दृष्टि ये भाव ओघ के समान है, क्योंकि इन सूत्रोक्त गुणस्थानों का सर्व प्रकार ओघ से कोई भेद नहीं है। कहीं पर भेद होगा इनमें? किसमें होगा? सम्यक्तों में क्या भेद होगा? हाँ, क्षायिक नहीं पाएंगे। हाँ, तो असंयत समय दृष्टि युक्त देव और देवियों के कौन सा भाव है? क्षावश। कहाँ है ऊपर? सम्मा मिच्छा दिट्ठी। हाँ, ये रह गया है। 24वें सूत्र में मिच्छादिट्ठि शासन सम्मादिट्ठि सम्मा मिच्छादिट्ठि तीनों ही बात थी। इनके मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्य दृष्टि और यहाँ डालना एक्स्ट्रा सम्यक मिथ्या दृष्टि पुराने में है क्या? अरे कौन सी वाली एडिशन है आपके? फिर जहाँ कहीं डिफरेंस होगा ना वहाँ बताना आप जरूर। सम्यक मिथ्या दृष्टि ये भाव ओ के समान है, वो तो बात हो गई। अब 25वां सूत्र, असंजत सम्मादिट्ठित्ति को भावो वो समय वा खो समय वा भावो। असंयत समय दृष्टि युक्त देव और देवियों के कौन सा भाव है? औपशमिक भाव भी है और क्षायिक भाव भी है, क्योंकि उनमें उपशम सम्यक्त और क्षावशमिक सम्यक्त्व इन दोनों का ही पाया जाना संभव है। तो वही शंका फिर पूछेंगे, उक्त भवनत्रिक आदि देव और देवियों में क्षायिक भाव क्यों नहीं बतलाया? नहीं, क्योंकि भवनवासी वानव्यंतर ज्योतिष्क देव द्वितीय आदि छह पृथ्वियों के नारकी सर्व विकलेन्द्रिय सर्वलब्धि अपर्याप्तक और स्त्री वेदियों में सम्यक दृष्टि जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ नहीं जन्मते उसकी बात लिस्ट बता दी। यानी भवनत्रिकों में, नीचे के छह नरकों में, विकलेन्द्रियों में, सभी श्रीवेदी में सम्यक दृष्टियों की उत्पत्ति नहीं होगी। सभी विकलेन्द्रिय ने एकेन्द्रिय के साथ सबको लेना, हाँ एकेन्द्रिय भी नहीं। तथा मनुष्य गति के अतिरिक्त अन्य गतियों में दर्शन मोहनीय कर्म की क्षपणा का अभाव है, इसलिए उक्त भवनत्रिक आदि देव और देवियों में क्षायिक भाव नहीं बतलाया। यानी वहां जाने पर कोई प्राप्त करेगा ऐसा कोई कहता हो, तीर्थंकर के पादमूल में करना है तो वहां तो सभी देव जा सकते हैं, तो वहां जाके भी कर लेंगे, तो वहां उनका अन्य गतियों में दर्शन मोहिनी के क्षपणा का कार्य नहीं होता है, मात्र मनुष्य गति में ही होता है। तो मरकर वहाँ उत्पन्न होने वाले में हो सकता है, परंतु मरकर क्षायिक सम्यक्त्व की और या कोई भी सम्यक्त्व जीव सम्यक्त्व के साथ वहाँ जन्मता नहीं है, ये कारण हो चुका। अब बातें भाग दी हम कर करें। हाँ सूत्र जावाणी के ज्ञान